हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अगली सुबह अस्पताल में सन्नाटा छाया हुआ था। रात भर की अफरा-तफरी के बाद सुबह की पहली किरणों के साथ अस्पताल के गलियारों में खामोशी पसर गई थी। वेदांश वहाँ अकेला खड़ा था। उसने एक पल के लिए भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थीं और पूरी रात वहीं पर रुका रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां से क्यों नहीं जा पाया था और क्यों उसका मन अंबिका में ही डूबा हुआ था। उसकी आंखों के सामने वो भयानक नज़ारा घूम रहा था जब उसने अंबिका को खून से लथपथ जमीन पर गिरते देखा था। कल रात के उन लम्हों ने वेदांश की जिंदगी को उलट पलट कर रख दिया था। वो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में था। सुबह करीब 8 बजे जब वेदांश इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक बेंच पर बैठा हुआ था, अस्पताल के मुख्य द्वार पर पुलिस की गाड़ी आकर रुकी। इंस्पेक्टर सार्थक सावंत अपनी टीम के साथ अस्पताल के अंदर आया। उसके चेहरे पर एकदम सीरियस एक्सप्रेशन थे और उसकी चाल में कुछ ऐसा था जिससे लगता था कि वो यहाँ किसी भी कीमत पर अपना काम पूरा करने आया था। वेदांश को देखते ही इंस्पेक्टर सार्थक सावंत उसकी ओर बढ़ा। वेदांश ने इंस्पेक्टर को देखते ही अपनी भौहें सिकोड़ लीं। पुलिस का यहाँ आना उसे खटक रहा था। पुलिस इंस्पेक्टर को वहाँ देखकर वेदांश ने मन ही मन कहा, पुलिस को यहाँ किसने बुलाया? किसकी इतनी हिम्मत हुई इस शहर में मुझसे टकराने की? किसी की नहीं थी। फिर भी ये इंस्पेक्टर सावंत, इसे कुछ ज्यादा ही खुजली है शायद, या फिर अपनी फिक्र नहीं है इसे। सार्थक ने आगे बढ़ते हुए कहा, वेदांश ठाकुर, क्या है ये सब? बताओ मुझे कि ये सब कैसे और क्यों हुआ? अंबिका को गोली कैसे लगी? वेदांश ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया? मैंने तो पुलिस को कॉल नहीं किया था। मैं तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझता। सार्थक ने उसकी ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, वेदांश, तुम मुझे मजबूर मत करो। मैं यहाँ अपने काम के लिए हूँ। ये एक जुर्म है और मुझे इसकी छानबीन करनी ही होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो। वेदांश ने गुस्से से जवाब दिया, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए खड़ा हूँ या तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए? और तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे कोई उम्मीद मत करना। सार्थक ने ताना मारते हुए कहा, पत्नी? अच्छा मजाक कर लेते हो तुम भी वेदांश ठाकुर। अभी कल ही तुम्हारी शादी हुई और आज इतना प्यार अपनी बीवी के लिए, क्या बात है। वेदांश ने अपनी मुट्ठी कस ली और गुस्से में सार्थक की ओर बढ़ा, देखो इंस्पेक्टर, हमारे रिश्ते को लेकर तुम्हारा क्या ओपिनियन है वो जानने में मैं जरा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की फिक्र है। अच्छा होगा तुम जिस तरह आए हो उसी तरह वहाँ से वापस चले जाओ। सार्थक भी अब थोड़ी गर्मी में आ गया था। उसने गंभीरता से कहा, वेदांश ठाकुर, तुम एक सीनियर इंस्पेक्टर से बात कर रहे हो, इसलिए आवाज़ थोड़ी नीची रखकर बात करो, क्योंकि मुझे भी पता है तुमने किस तरह अंबिका से शादी की है और इतने दिनों से तुमने उसे अपने पास जबरदस्ती रखा हुआ था। मैं अंबिका को बहुत दिनों से जानता हूँ, नहीं सालों से। वो तुम्हारे जैसे आदमी से शादी तो कभी नहीं करेगी। वेदांश ने भी जैसे उसे याद दिलाते हुए कहा, नहीं करेगी से क्या मतलब है तुम्हारा? वो मुझसे शादी कर चुकी है, और भले ही तुम उसे सालों से जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उसे इतना भी जानते होगे। और अगर कुछ जानते भी थे ना, तो भूल जाओ, अब वो तुम्हारी कोई नहीं लगती। उन दोनों के बीच गर्मी बढ़ ही रही थी कि तभी डॉक्टर तेजी से भागते हुए वहां पर आए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। वे सीधे वेदांश की ओर मुड़े और बोले, वेदांश सर, एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। आपकी पत्नी का ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन दिल के एकदम नज़दीक गोली लगने की वजह से काफ़ी सारी नसें डैमेज हुई हैं और उनका काफ़ी खून बह चुका है। अगर तुरंत ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हुआ तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। उसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है और हमने चेक कर लिया है। हमारे ब्लड बैंक में अभी वो इस ब्लड ग्रुप का ब्लड नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी रेयर होता है। हमें तुरंत इंतज़ाम करना होगा। डॉक्टर की बात सुनते ही वेदांश का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गया। उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। वो अचानक कमज़ोर महसूस करने लगा। उसने धीमी आवाज़ में कहा, ओ पॉजिटिव, मेरा ब्लड ग्रुप ए भी पॉजिटिव है, नहीं तो मैं खुद दे देता। लेकिन डॉक्टर आप बताइए, और कितना टाइम है हमारे पास? मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करता हूँ। डॉक्टर ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, ज़्यादा वक्त नहीं है वेदांश जी, अगर अगले कुछ घंटों में ब्लड नहीं मिला तो हम उन्हें। डॉक्टर की बात अधूरी ही रह गई, क्योंकि वेदांश की आंखों के सामने अंबिका का बेहोश होता हुआ चेहरा आ गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वेदांश ने डॉक्टर की बात काटते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। प्लीज ऐसा कुछ भी मत बोलिए डॉक्टर, आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है और आपको मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं इंतजाम कर लेता। खैर, मैं अभी भी कर लूंगा इंतजाम, बस आप इसका ट्रीटमेंट जारी रखिए, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। इस बीच सार्थक की आंखों में भी टेंशन साफ नजर आ रही थी। डॉक्टर की बात सुनकर अब वो भी वहाँ की सिचुएशन को समझ चुका था, इसलिए उसने फिलहाल वेदांश से कोई भी बहस नहीं की। वेदांश और अंबिका की शादी का सच पता होने की वजह से भले ही उसे वेदांश पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे पता था इस वक्त वेदांश के साथ पर्सनल दुश्मनी से ज्यादा अंबिका से जो उसकी दोस्ती है उसे निभाने का वक्त है। सार्थक वेदांश के करीब आया और आराम से बोला, देखो वेदांश, मैं पुलिस इंस्पेक्टर के साथ एक इंसान भी हूँ और अंबिका का दोस्त भी हूँ, इसलिए मैं भी नहीं चाहता कि उसे कुछ भी हो, इसलिए मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करके देखता हूँ, शायद ब्लड का इंतजाम हो जाए। वेदांश ने उसकी ओर देखा, वो जानता था कि चाहे जो भी हो, इस वक्त उसे अंबिका की जिंदगी बचाने के लिए ये सब कुछ करना होगा, फिर चाहे उसे सार्थक से ही हेल्प क्यों न लेनी पड़े। कुछ देर के लिए वो अपनी ईगो को भी साइड में रखने को तैयार हो गया था, सिर्फ और सिर्फ अंबिका के लिए। वेदांश ने काफी ज्यादा डेस्परेट होते हुए कहा, क्या तुम्हारे पास कोई डोनर है जिसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव हो? मैं उसे कितने भी पैसे देने के लिए तैयार हूँ, तुम बस उसे यहाँ पर बुला दो। सार्थक ने सिर हिलाया, मैं अपनी टीम से बात करता हूँ, देखते हैं कोई डोनर हो तो तुरंत ब्लड अरेंज करवाते हैं। सार्थक ने तुरंत अपनी टीम के लोगों को फोन लगाया और आसपास के ब्लड बैंकों में कॉल करना शुरू किया, लेकिन ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव मिलना इतना आसान नहीं था। वेदांश बेचैनी से अस्पताल के गलियारे में टहल रहा था, उसका मन घबराया हुआ था, उसे लग रहा था जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही हो, अंबिका के बिना उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचता। उसने अपने दिल में कहा, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जी पाऊंगा, क्योंकि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, उसे मेरी वजह से गोली लगी, वो तुषार मुझे मारने के लिए आया था, और अच्छा होता अगर मैं मर जाता, कम से कम अंबिका तो सेफ रहती। पता नहीं क्यों, लेकिन उसके मन में ऐसे ही ख्याल आ रहे थे और वो अंबिका को लेकर कुछ भी बुरा नहीं सोचना चाहता था। सार्थक ने उसकी ओर गंभीरता से देखते हुए कहा, मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारी मदद कर रहा हूँ क्योंकि अंबिका की हालत बेहद नाजुक है और इसके लिए जिम्मेदार कोई तो है, क्योंकि कल रात तक वो ठीक थी और आज वो इस तरह हॉस्पिटल में है। वेदांश के मन में ये बात चुभ गई, उसे लगा जैसे सार्थक उस पर शक कर रहा था और उसे ताना मार रहा था, लेकिन अभी वो किसी भी तरह की बहस करने की सिचुएशन में नहीं था। सार्थक समझ चुका था कि इतनी आसानी से उन्हें अंबिका का मैचिंग ब्लड ग्रुप नहीं मिलने वाला, इसलिए उसने तुरंत अंबिका के परिवार को इन्फॉर्म करने का फैसला किया। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और अंबिका के भाई बहनों को फोन किया।
कुछ ही मिनटों में अंबिका के दोनों भाई अक्षय और मानस अस्पताल पहुंच गए। अक्षय के चेहरे पर अपनी बहन के लिए फिक्र के साथ साथ वेदांश के लिए गुस्सा भी साफ दिखाई दे रहा था। वहीं छोटे भाई मानस को सिर्फ अपनी बहन की फिक्र थी और उसे इस वक्त अपनी दीदी से मिलना था, जिसे उसने काफी दिनों से नहीं देखा था। अक्षय ने आते ही वेदांश को घूरा। वेदांश को उसकी नज़रों में कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने इस समय उस पर ध्यान नहीं दिया। टू बी कंटिन्यूड। अगर आप लोग स्टोरी से रिलेटेड कोई भी बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है @simrana22। यहाँ पर प्रोफाइल से भी आप हमें इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपको व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना है तो भी आप इंस्टा पर हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको लिंक भेज देंगे।